जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चैतन्य भागवत आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे चैतन्य भागवत का अध्याय 3 जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंबर जय नित्यानंद गदाधरे ईश्वर। तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं वृंदावन दास ठाकुर, कहते हैं कि सारे जीवों के प्राणनाथ विश्वंबर आपकी जय हो, और नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के जो ईश्वर है ऐसे चैतन्य देव की जय हो। जय जय अद्वैतादि भक्तेर अधीन भक्ति दान दिया प्रभु उद्धार अधीन। तो कहते कि अद्वैत आचार्य और जो बाकी भक्त है उनकी जय हो। हे चैतन्य देव, आप भक्ति का दान देकर सबका उद्धार कीजिए। यही मत नवद्वीपे गौरांग सुंदर भक्ति सुखे भाते लह सर्व परिकर। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं किस प्रकार से जैसे पिछले अध्याय में वर्णन किया है, किस प्रकार से उन्होंने सारे नवद्वीप के भक्तों के साथ भक्तिमय वातावरण का आनंद और सुख अनुभव किया, और सारे लोग भक्ति की धारा में बह जा रहे थे। प्राण है न सकल सेवक अपनार कृष्ण बलि कांदे गला धरिया सवार। तो चैतन्य महाप्रभु जिनको अपने सेवक बहुत अधिक प्रिय है, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु भक्तों का गला पकड़ पकड़ कर उनके गले में गला डाल के, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, इस जगत में भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह व्यक्ति दूसरे के गले में गला डालता है और रोता है, अपना दुख प्रकट करता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी दुखी हैं, तो वो क्या करते थे नवद्वीप में, अपने भक्तों के गले में गला डाल के कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोते थे। देखिया प्रभु र प्रेम सर्वदास गान चतुर्दी के प्रभु बेड़ी करे क्रंदन। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो महाप्रभु के जितने भी भक्तगण थे, सेवक थे, उन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया था और वो भी रो रहे थे। मतलब महाप्रभु गले में अपना गला डाल के आलिंगन करके रोते थे भक्तों का, तो उनको भक्त उनकी स्थिति को देखकर वो भी रोया करते थे जोर जोर से। आछुक दासेर कार्य से प्रेम देखिते शुष्क काष्ट पाषणादि मिलाय पुमिते। तो कहते कि सेवकों की बात तो दूर ही रही कि महाप्रभु का प्रेम भक्ति ऐसा था कि जो देखकर भक्त लोग तो रोते ही थे, लेकिन इतना ही नहीं, कहते कि जो सूखी हुई लकड़ियां हैं या जो पत्थर हैं वो भी पिघल जाते थे और मिट्टी में मिल जाते थे। मतलब इतना शक्तिशाली चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण प्रेम था या कृष्ण भक्ति थी। छाड़ी धन पुत्र ग्रह सर्व भक्तगान अर्निश प्रभु संगे करे न कीर्तन। तो कीर्तन के लिए देखो, महाप्रभु के संग में कीर्तन करने के लिए इनका कितना बड़ी अभिलाषा रहती थी, इच्छा रहती थी। ये लोग अपना घर पुत्र धन सब छोड़ के महाप्रभु के संग में जाते थे और अहर्निश दिन रात कीर्तन करते थे। नवद्वीप में एक ही बिजनेस था, दिन में ये लोग हरिनाम करते थे, कृष्ण कथा करते थे, और जैसे रात होते थे श्रीवास पंडित के आंगन में, श्रीवास आंगन में उनकी दिव्य लीलाएं चलती थी। चैतन्य भागवत मध्य लीला भरा हुआ है, श्रीवास आंगन में जितनी ज्यादा महाप्रभु के कार्यकलाप हुए हैं वो किसी और स्थान में नहीं हुए हैं। हैले न गौरचंद्र कृष्ण भक्ति माय जखन जे रूप सुने सही मत है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु अभी इस स्थिति में नवद्वीप में पूरी तरह से कृष्णमय हो गए थे या भक्ति भावना से भर गए थे, और कोई भी व्यक्ति उनके बारे में जैसे सुनता था उसके हृदय में भी वही भावना कृष्ण के प्रति होती थी या उसी भावना से भावित हो जाता था। दास भावे प्रभु जबे करे नरोदान हैल प्रहर दुए गंगा आगमान। तो कहते कि महाप्रभु जब दासता के भाव में जब रोया करते थे तो दो दो प्रहर तक, एक प्रहर में तीन घंटा, एक प्रहर तीन घंटे का होता है, तो ऐसे महाप्रभु दो प्रहर तक रोया करते थे और ऐसे लग जाता था कि मानो उनकी आंखों से गंगा नदी बह रही है। ये सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना कैसे पानी बह सकता है किसके आंखों से। ये वृंदावन दास ठाकुर ने शायद ज्यादा तो नहीं लिखा, तो वृंदावन दास ठाकुर कई बार कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है ऐसे लोगों को डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली देते हैं, कहते ऐसे लोग महाप्रभु को नहीं समझ सकते। महाप्रभु की जिनके ऊपर कृपा है उन्हीं लोगों का विश्वास चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के प्रति हो सकता है। जबे हसे तबे प्रभु प्रहरे कहसे मूर्छित हैले प्रहरे क नाही श्वासे। तो इतना बड़ा वर्णन करते हैं कि जब वो हंसते थे तो एक एक या दो दो प्रहर हंसते रहते थे। अब सोचो कोई व्यक्ति हंस रहा है, वो तीन तीन घंटे हंस ही रहा है, मतलब ये कोई तो ये बहुत बड़ी सीमा है। एक्चुअली भागवतम श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि हंसती रोदती गायती, वो कहते कि कृष्ण का भक्त जो भगवान का नाम लेने मात्र से रोने लगता है, गाने लगता है, चिल्लाने लगता है, पागल की जैसी हरकतें करता है। तो बाह्य दृष्टि से देखे तो पागल ही महसूस हो सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को कोई भी देखे, जैसे दिल्ली में ऐसी कोई घटना हो रही है कहां, तो कोई भी कहेगा कि कुछ भूत लग गया है या कुछ पागलपन का फेरा आ गया है कि नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित हो जाते थे तो एक एक प्रहर पता नहीं चलता था कि वो सांस ले रहे कि नहीं, मतलब तीन घंटे सांस ले रहे कि नहीं ऐसे पता नहीं चलता था। तो महाप्रभु ये बहुत महाभाव इसे कहते हैं जो प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु ने। जैसे आप देखो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा केवल कृष्ण कथा सुन के उस भाव में वो हो गए, महाप्रकाश भाव। जब रोहिणी कृष्ण कथा कह रही थी और रोहिणी क्या क्या बता रही थी वो भी दिया हुआ है शास्त्र में कि रोहिणी माता क्या क्या कृष्ण कथा कह रहे थे, तो वो भी दिया हुआ है। क्योंकि सारे जो रानियां थी 16108 रानियां, तो रुक्मिणी कहती है कि जब कृष्ण रात को सोते हैं तो रात को अचानक उठ उठ के गोपी गोपी राधे राधे बेड पर ही चिल्लाते रहते, नंद यशोदा, फिर मैं डर जाती हूँ कि ये क्या हो गया। ऐसा लगता है, वो कहती है कि कृष्ण शरीर से द्वारका में है केवल, लेकिन मन और हृदय वृंदावन, ऐसा वो रुक्मिणी सोचती है। फिर दूसरे दिन सत्य बाबा कहते कि इतना ही नहीं, रात में नहीं, कहते मेरे घर में तो दिन में ऐसा होता है, वो कहती है। तो ये सब लोग कहते फिर क्या ये लोग क्या 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 ऐसी चीज है जो इतनी हमको आकर्षित करती है, और हमें क्या कमी है, हमारी सेवा में हमारे डिवोशन में क्या कमी है। तो वो सब रोहिणी को पूछते हैं, क्योंकि द्वारका में तीन ही लोग थे जो कृष्ण लीला को जानते थे, जो वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने साक्षात देखा था। एक थे कृष्ण स्वयं, एक थे बलराम, दूसरे थी रोहिणी माता। अब ये दोनों से तो पूछेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा रोहिणी से पूछते हैं। तो उन्होंने रोहिणी से पूछा, रोहिणी ने कहा देखो ये जो कृष्ण लीला इतनी यह है कि मैं जैसे ही कृष्ण की लीला को बोलने लगूंगी कृष्ण और बलराम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो दौड़ के यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि वो जानते थे पद्म पुराण का श्लोक, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र स्वामी नारद। हाँ, तो ये कृष्ण कथा कृष्ण को अट्रैक्ट करती है, इतनी शक्तिशाली है। तो जब मदर रोहिणी सुना रही थी तो कृष्ण उस समय उस सुधर्मा सभा में थे। अब देखो भगवान ने अपने उस द्वारका का निर्माण किया था तो देवताओं ने उनको डोनेशन में ऑडिटोरियम दे दिया था, उसका नाम था सुधर्मा सभा। और ऐसा था कि जहाँ मृत्यु मतलब ओल्ड एज नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, वहां जो भी बैठेगा। तो कृष्ण उद्धव वगैरह के साथ काफी डिस्कशन करते थे द्वारका में। तो कृष्ण और बलराम जहां भी उनके बारे में कोई कथा कर रहा है, कोई उनका चर्चा कर रहा है, तो उनका हृदय अट्रैक्ट हो जाता है। तो मदर रोहिणी तो बोल रही थी उनके बारे में, तो उसी समय कृष्ण और उस समय उन्होंने कहा कि देखो वो दोनों भी आ सकते हैं इस स्थान में, किसी को दरवाजे में खड़ा होना। तो सुभद्रा देवी कहते मैं छोटी हूँ, मैं खड़े रहूंगी। तो उन्होंने कहा कैसे खड़े रहना, दरवाजे के बीच में खड़े रहना और दोनों हाथों से ऐसे ऐसे इधर वो पकड़ना ये साइड और उधर इस साइड तुम बीच में रहना। तो जब तक कृष्ण कथा हो रही थी तो ये सुभद्रा बेचारी कृष्ण कथा में इतना मग्न हो गई सुनने में, इतना अट्रैक्ट हो गई अपने भाई के बारे में सुन के। दो भ्रातर हो भजे, दो भाइयों को भजन करो कहते, एक तो गौरनिताय दूसरे हैं कृष्ण बलराम। तो जब सुन रहे थे तो कृष्ण वहां सभा में थे उद्धव और उग्रसेन सबके साथ, वहां से चैरियट लेके भाग के आते हैं और आके क्योंकि सुभद्रा भी फुल्ली एक प्रकार से अचेत हो गई थी कृष्ण कथा को सुनकर। वो खुद ही उसके हाथ ऐसे थे तो खुद ही देखो सुभद्रा को हाथ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, जगन्नाथ बलराम को तो ऐसे हाथ है लेकिन सुभद्रा के हाथ ही नहीं है। वो पूरे ऐसे रखे थे, वो ऐसे ही चले गए अंदर, इतना वो मग्न हो गई थी हियरिंग में। और फिर काफी वर्णन आता है कि उनके आंखें वगैरह का। तो फिर उस समय क्या हुआ, ये दोनों आए और ये दो साइड में खड़े हो गए क्योंकि अभी दरवाजे में दो जगह बचे, इसलिए हम देखते हैं कि तीनों ऐसे क्यों हैं। हाँ तो जगन्नाथ फिर उनके कौन सी साइड में आए, लेफ्ट साइड में आ गए बलराम यहाँ। तो ऐसे वो तीनों बैठते हैं, तीनों खड़े होते हैं और सुनते सुनते है। तो जब मदर रोहिणी कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे तो कुछ इनके अभी हाथ पांव ऐसे ही थे, सुनने में अटेंटिवनेस था कृष्ण के और बलराम के। लेकिन जैसे ही रोहिणी माता ने कृष्ण के श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ लीलाओं का वर्णन किया तो कृष्ण के फिर आंखें ऐसी नहीं रही, बड़ी होने लगी और हाथ वगैरह सब अंदर चले गए। तो इस प्रकार से ये क्या कहेंगे जगन्नाथ के फॉर्म में वो आते हैं और किसी ने नहीं देखा, किसी का भी नजर नहीं गया। लेकिन जो ब्रह्मचारी थे एक, हाँ कौन, नारद जी स्पेसमैन हमारे हीरो हैं, दरवाजा लगाए तो वो जा रहे थे और वो चिल्लाने लगे मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। आप देखो चैतन्य भागवत में सेम लीला आती है, चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्रीवास आंगन में कीर्तन करने के लिए जा रहे थे और श्रीवास पंडित अपने कपड़े एक दर्जी के पास सिलाया करता था, वो मुस्लिम था। लेकिन एक दिन महाप्रभु जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को श्यामल रूप में प्रकट किया कृष्ण। तो वो दर्जी और उस पास टाइम से वृंदावन दास ठाकुर सिखाना चाहते हैं महाप्रभु कि वैष्णव के अनुगत रहोगे, वैष्णव को सर्व करोगे तो आप अपने आप क्वालिफाइड बन जाते हो कृष्ण को देखने के लिए, केवल ये क्वालिफिकेशन है। हाँ जैसे श्रीवास पंडित के सारे जो दास दासियों ने महाप्रभु का नरसिंह रूप देखा, हमने पहले सुना फिर कैसे नरसिंह रूप में महाप्रभु आवेश में आ गए थे। तो ये जो दर्जी था सिलाई करने वाला ये मुस्लिम था, लेकिन इसका एक क्वालिटी था महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा कि सिंसियरली श्रीवास पंडित को वो सर्व करता था, उनके कपड़े सिलाता था और कई प्रकार से। तो लॉर्ड चैतन्य आते हैं या जाते हैं तो महाप्रभु ने जानबूझ के अपना श्यामल रूप प्रकट किया। तो इसने दूर से दुकान से, क्योंकि दुकान था उसका नवदीप में, कहा मैंने देखा, पागल हो गया। अब वृंदावन दास ठाकुर काफी अच्छा वर्णन करते हैं तो महाप्रभु उसके ऊपर कृपा कर दे, क्यों कहते कि तुम मेरे डिवोटी को सर्व करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण गुण है कृष्ण को अट्रैक्ट करने का। और चैतन्य महाप्रभु ने तो अपने सारे लीलाओं में इस दो चीजों को बहुत जोर दिया है, क्या चीज, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा, बस कोई और चीज नहीं है। जैसे विष्णु प्रिया जब संन्यास लेने वाले थे चैतन्य महाप्रभु, लास्ट नाइट थी, लास्ट नाइट का वर्णन चैतन्य मंगल में आता है। कहते कि जब महाप्रभु संन्यास के लास्ट नाइट में अपने बेड से उठे, बाहर निकल ही रहे थे, तो विष्णु प्रिया ने पकड़ लिया उनके कपड़ों को, कहा जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो नींद ही नहीं था, क्योंकि पूरे सब जगह ये न्यूज पहले थी कि लॉर्ड चैतन्य संन्यास लेने वाले हैं। संन्यास का मतलब शिखा नहीं रखने वाले और यज्ञ सूत्र अपना नहीं रखेंगे जनेऊ, क्योंकि ब्राह्मण ये रखता है, लेकिन उस समय मायावाद संन्यास था तो ये दो चीजें नहीं रखते संन्यासी। तो ये कहते कि मैंने सुना है कि आप हेड शेव करने वाले हैं और अपना ये त्यागने वाले हैं जनेऊ, तो वो डायरेक्ट नहीं बोले कि आप संन्यास लेने वाले हैं, तो महाप्रभु समझ जाते हैं, इसको पता चल गया है। तो कहते कि आप देखो मैं तो इतनी बालिका हूँ, 12 और 14 साल का एज था विष्णु प्रिया का, और फिर मदर सची विधवा मदर थी महाप्रभु की। तो कहते आप तो बड़ा वैष्णव या धर्म की शिक्षा देने जा रहे हो, लेकिन हम तो मर जाएंगे आपके बिना। तो लॉर्ड चैतन्य उनको कहते हैं कि देखो विष्णु प्रिया, लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि इस जगत में दो चीजें सत्य हैं, इन दो चीजों के अलावा बाकी सारा इल्यूजन है, भ्रम है। तो वो कहते क्या है, तो लॉर्ड चैतन्य कहते हैं वैष्णव की सेवा और नाम संकीर्तन, यह कहकर महाप्रभु विष्णु प्रिया को छोड़ के निकलते हैं। जैसे निकलते देखा सची माता दरवाजे में चेयर लेके बैठी थी वहां, सची माता तो उनको नींद ही नहीं था, सची माता तो कई दिन नींद नहीं था, वो तो रोते जा रहे थे, लेकिन लास्ट डे में आए थे तो महाप्रभु ने कुछ ऐसे बोले नहीं उनसे, उनको प्रणाम किया, उनका परिक्रमा किया, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। सची माता फिर ना नहीं कह सकती थी, उसकी स्थिति तो वैसी हो गई थी जैसे गाय का जो बछड़ा जा रहा है ना, तो फिर वो चले जाते हैं संन्यास लेते हैं जो चैतन्य महाप्रभु है। तो महाप्रभु ये दो चीजों की बहुत ज्यादा शिक्षा देते हैं और ये क्वालिफिकेशन है कृष्ण की भक्ति को अनुकूल करने के लिए। अब जहां भी देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, जब भी नवदीप सेठ कोई भी टूर जगन्नाथपुरी जाता था और वो 4 महीने रहने के बाद जब लास्ट दिन वो वापस जाने वाले होते थे, तो ये सारे वैष्णव महाप्रभु के पास जाते थे और कहते थे कि देखो अभी हम बाकी 8 महीने के लिए, 8, 9, 10, 11, 12, 4 महीने पूरे रहते थे, 8 महीने हम जा रहे हैं आपके संग से दूर, हमें क्या करना चाहिए, मतलब सिंसियरली पूछते थे जाकर महापुरुष के पास क्या करना चाहिए बाकी दिनों में। छुट्टी मिले तो फिर नहीं, ऐसे नहीं, उनको छुट्टी थी नवदीप में रहना, तो कहते महापुरुष के पास जाते थे पूछते थे, तो महापुरुष दो ही चीजें बताते थे, क्या कहते थे वैष्णव सेवा नाम से। फिर वहां पूछते हैं कौन वैष्णव है, किसकी सेवा करनी चाहिए। तो महाप्रभु इस प्रकार से 3-4 बार चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है कि रिपीट सेम क्वेश्चन नवदीप के भक्त महाप्रभु को पूछा करते थे, हर महाप्रभु हर बार सेम आंसर देते थे, लेकिन वैष्णव के जो स्टैंडर्ड है उसको हर बार बताते थे, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उन्नत वैष्णव, इस प्रकार से महाप्रभु उनको शिक्षा देते थे। लेकिन दो प्रिंसिपल महाप्रभु हर समय जोर देते थे, और महाप्रभु ने अपने जीवन में भी करके दिखाया, गया से आने के बाद नवदीप में हर भक्त के गंगा के किनारे किसी के धोती धोएंगे, उसको निचोड़ेंगे, सुखाने डालेंगे, और क्या करते थे, कोई पूजा कर रहा है उसको मिट्टी चाहिए गंगा की वो ला के देते थे, किसी को बैठने के लिए आसन दिया करते थे, किसी का फूलों का वो पूजा के लिए टोकरी वो घर छोड़ के आते थे उसकी। तो काफी चीजें, ये दो चीजें लॉर्ड चैतन्य ने सिखाई हैं, बहुत शक्तिशाली हैं ये दो जो चीजें हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ मूर्छित हो जाते थे हर समय, और मूर्छित हो जाते थे तो वो 3 घंटे के लिए मूर्छित ही रहते थे, हंसते थे तो 6 घंटे हंसते रहते थे, हाँ, तो इस प्रकार से उनकी दशा थी। तो ये वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, क्षण स्वानुभव दम्ब करे वैसे मुहित ही यहाँ बलि हसे। तो ये मुहित ही की बात आ रही थी कि मैं वही हूँ। और नारद जी भी उस लीला में कहते कि मैंने देखा हाँ, जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा को कहते हैं। तो यह कहते हैं कि जब महाप्रभु का ऐश्वर्य भाव प्रकट होता था तो एक साथ वो बैठ जाते थे और वो कहते थे कि मैं वही हूँ, हंसने लगते थे। तो मैं वही हूँ का तात्पर्य क्या है कि मैं वही कृष्ण हूँ। इस बात को बताते हैं कैसे मैं वही हूँ। वो कहते को थगेल नाड़ा बूढ़ा जे अनिल मोरे बिलायु भक्ति रस प्रति घरे घरे। तो कहते हैं कि कहा गया वो नाड़ा। नाड़ा अद्वैताचार्य को कहते थे कि जो बूढ़ा है और ओल्ड थे अद्वैताचार्य महाप्रभु के समय। हाँ, तो वो कहते कि कहा गया जिसने मुझे बुलाया, मुझे यहाँ लाया है और मैं अभी हर एक घर में कृष्ण भक्ति रस का वितरण करूंगा, लेकिन जिसने बुलाया वही गायब है। यहाँ से क्षण कृष्ण रे बाप परे बलि कांदे आपनार केश आपनार पाए बांधे। तो अब तो सत्य के महाप्रभु के केश इतने लंबे लंबे होते थे नवदीप में जब थे, क्योंकि हम जिस फॉर्म में राधा गौरनिताई को वर्शिप करते तो वो नवदीप के गौरनिताई है। सन्यासी को वर्शिप करते तो अद्भुत ही रहता, रोज सैफरॉन पहनाते हम उनको और उनको शेविंग करना पड़ता और फिर है कि नहीं, सन्यास वेश तो कुछ अद्भुत ही होता। तो लेकिन महाप्रभु रोने लगते थे कृष्ण रे बाप रे। वास्तव में वो कहते थे हमारे बाप कौन है, कृष्ण है हमारे जो पिता है। प्रहलाद महाराज इसी कारण से अपने पिता को पिता नहीं बोलते थे, आसुर वर्य, क्योंकि वो जानते थे मेरा पिता कौन है, कृष्ण है, इसलिए वो कहते थे। हाँ, ऐसा आश्चर्यकर कह रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि क्या रीजन है, आसुर वर्य। हाँ, कहती कि आसुरों में श्रेष्ठ मेरे प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते कि वो जानते थे कि मेरे बाप तो कृष्ण है। तो महाप्रभु कहते बाप पर ये कृष्ण नहीं, क्योंकि क्यों कह रहे बाप, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के मूड में है तो श्रीमती राधा रानी अपने पिता का नाम लेती रहेगी। तो फिर महाप्रभु क्या करते थे, अपने केशों से अपने पाव को बांध डाल देते थे, पाव को बांध देते थे। तो जो कितने लंबे केश होंगे उनके। अक्रूर जाने श्लोक पढ़िया क्षण पड़े पृथ्वी ते दंडवत हया। तो फिर वो क्या पढ़ते थे, एक श्लोक को पढ़ा करते थे आक्रूर के श्लोकों को पढ़ते थे। जब आक्रूर जा रहे थे कृष्ण को लेकर और जो गोपियों ने जो उनका जो विरह की भावनाएं प्रकट की थी उस समय, उन श्लोकों को पढ़ते थे और दंडवत लगाते थे और रोते रहते थे। हयले न महाप्रभु जे है न अक्रूरे सही मत कथा कहे बाह्य गेला दूरे। तो महाप्रभु अक्रूर के भाव में वो श्लोक पढ़ते थे जब अक्रूर वृंदावन आ रहे थे और कृष्ण के चरण कमलों को देख के उन्होंने जो स्तुतियां की थी और दंडवत करते थे पूरे चारागाह में जहां जहां बछड़े गए हैं कृष्ण के चरण कमल हैं। तो महाप्रभु भी दंडवत कर रहे वैसे श्लोक पढ़कर और उस भाव में वो मग्न हो जाते थे और अक्रूर की भावना में कुछ वचन बोला करते थे, शब्द बोला करते थे। मथुराय चल नंद राम कृष्ण लैया धनुर्मुख राज महोत्सव देखी गया। तो वे कहते थे कि हे नंद, हाँ तुम क्या करो, राम और कृष्ण को लेकर मथुरा चलो, क्योंकि राजा ने वहां धनुष जो शिव धनुष था उस यज्ञ का धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है। यही मत नाना भावे नाना कथा काय देखिया वैष्णव सब आनंद वास। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नाना प्रकार के वचनों को बोला करते थे, नाना प्रकार के भाव प्रकट किया करते थे और ये सब चीजें वैष्णवगण देखते थे और वैष्णव बहुत अधिक आनंद हो जाते थे, वो आनंद में वो रोने भी लगते थे। एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी गर्जिया मुरारी घरे चले ला अपने। तो एक दिन उन्होंने वराह के का गुणगान करने वाला श्लोक को सुना तो चिल्लाते हुए वो मुरारी गुप्त के घर में गए। अंतरे मुरारी गुप्त प्रति बड़ा प्रेम हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र है। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है और जो त्रेता युग में राम के रूप में अवतरित हुए थे, तो ये मुरारी गुप्त साक्षात हनुमान है। तो उनका हनुमान का प्रेम राम के प्रति बहुत है, उसी प्रकार से महाप्रभु का उस मुरारी गुप्त के प्रति बहुत अधिक विशेष प्रेम है। मुरारी रा घरे गेला श्री सचिनंदन संभ्रमे करेला गुप्त चरण वंदन। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए दौड़ के और वहां जाकर मुरारी गुप्त ने इन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। शुकर शुकर बलि प्रभु चली जाए स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर दिखे चाय। और चैतन्य महाप्रभु शुकर शुकर कहते हुए आगे चलने लगे। और जो मुरारी गुप्त है इस चीज को देखकर कि क्या हो गया आज इनको शुकर शुकर क्यों कह रहे हैं, हाँ वो चारों ओर देखने लगे, वो सोचने लगे कि शुकर तो नहीं आ गया मेरे घर के आसपास कहाँ, हाँ ये सोच रहे थे वो। विष्णु ग्रह प्रविष्ट हिला विश्वम्बर सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदर। तो फिर विष्णु का जो उनका अल्टर था मंदिर था मुरारी गुप्त के घर में, तो वहां वो घुसे और जल का जो पात्र था गड़ू था, हाँ उस भरा हुए जल के गड़ू को वो देखते हैं। वराह आकार प्रभु हैला क्षय क्षणे स्वानुभावे गड़ू प्रभु तुलिला दर्शने। तो उसी समय वराह के भाव में आ गए और तुरंत वो गड़ू अपने यहाँ सुन में आगे वराह के स्पेस में रखते, क्योंकि पृथ्वी में उन्होंने आगे उठा के उन्होंने समंदर के ऊपर रखे थे। तो आप देखेंगे भागवतम में पहला वराह लीला का वर्णन आया है, बाद में नरसिंह लीला का आया है, लेकिन यहाँ महाप्रभु कैसे कर रहे हैं, पहले श्रीवास आंगन में नरसिंह भाव में आए थे पिछले हम दो दिन पहले पढ़ा, लेकिन आज वराह भाव में कभी भी वो किसी भी भाव को प्रकट करते हैं। गर्जयज्ञ वराह प्रकाशे खुराचारे प्रभु बोले मोर स्तुति कर मुरारे। तो वो यज्ञ वराह के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और वो मुरारी गुप्त को कहने लगते हैं। उन्होंने अपने दांतों पर उसको उठाया था, अपने दोनों पाव के खुर ऊपर उठाए थे और मुरारी गुप्त को कहते हैं कि मेरी स्तुति करो, देखो भगवान को अच्छा लगता है खुद का गुणगान करवाना। तो इसका मतलब है हमें वंदनम का अभ्यास करना चाहिए, स्तुति करना भगवान की सीखनी चाहिए। भगवान लाइक बोला अपना गुणगान चाहते हैं, कौन नहीं चाहता अपना गुणगान सुनना, तो भगवान में वो गुण है। तो प्रभुपाद कहते हैं ना वो जो परम सत्य है उनमें वो गुण है, तो फिर जो जीव है उसमें भी वो छोटे छोटे वो गुण है सारे जो उनमें है, तो ये उनमें गुण है। स्तब्ध हैला मुरारी अपूर्व दर्शने केवले वे मुरारी ना आए से वदने। तो मुरारी गुप्त स्तब्ध हो जाते क्योंकि अचानक इन्होंने बोला, ऐसे नहीं कि वो मैं आज प्रिपेयर करके आता हूँ क्लास था और फिर आपका स्तुति करता, ऐसे भी नहीं था, या कुछ सिलेक्टेड श्लोका चुनता हूँ क्योंकि आपको तो कहा गया है उत्तम श्लोक कि आपका वर्णन तो चुने हुए श्लोकों में किया जाता है स्तुतियों में किया जाता है। तो इन्होंने ये भी नहीं कि वो पहले से प्रिपेयर करके आते, लेकिन संभ्रम में बहुत जल्दी हो गया अचानक क्या करे, तो उनके मुख से कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं मैं। प्रभु बोले बोलो बोलो किछु भय नाय, कुछ भी बोलो भयभीत मत हो। एतदिन नाहि जान मुई यही साठाय, तो तुम नहीं जानते हो इतने दिनों से कि मैं यहाँ हूं। कंपिता मुरारी कहे करे या मिनती तुम इसे जाना प्रभु तुम्हारा जिस स्तुति। तो मुरारी गुप्त बहुत अधिक एक प्रकार से कांपने लगे विनम्रता पूर्वक, और वो कहने लगे कि आप तो आपकी जो स्तुति है वो आप ही जानते हो, मैं नहीं जानता आपकी स्तुति। अनंत ब्रह्मांड जार एक पने धरे सहस्त्र वदन है जारे स्तुति करे। तो फिर वो कहते हैं कि जो अनंत शेष है, जो एक फन के ऊपर अनंत ब्रह्मांड को धारण करता है, तो अनंत शेष का इतना बड़ा वो है फन कि वो सारे जो ब्रह्मांड है मस्टर सीड के समान उनके ऊपर है। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में इसका वर्णन आता है। तो कहते कि ऐसे जो अनंत शेष है जिनके सहस्त्र मुख है, उन सहस्त्र मुखों से आपकी स्तुति करते हैं। तबुना ही पाय अंत से प्रभु कहे तुमार सवेते आर के समर्थ है। तो कहते कि वो हजारों मुखों से अपनी आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्तुति का वो अंत नहीं पाते हैं। तो फिर आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है, मतलब ये एक्सक्यूज करने वाली बात है। कई बार हम कहते ना प्रभु जी आप थोड़ा बताओ कुछ, कहते प्रभु जी आप इतने सीनियर हो, मैं कैसे बोलो आपके सामने। मतलब ये क्या है, स्किपिंग एक्चुअली प्रॉब्लम है। कृष्ण के बारे में बोलना इस संसार में सबसे कठिन कार्य है। तो ये वैसे ही कर रहे हैं एक प्रकार से, हम देखे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। प्रभु जी आप आज पढ़िए, या फिर आज आप गाइए, या फिर आप बताइए कुछ। नहीं नहीं प्रभु जी आप इतने सीनियर इतने ज्यादा, मैं तो अभी नया नया आए हो, क्या मैं सुनाऊ आपको। तो ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, आप तो इतना आपका गुणगान है, आपका तो अनंत शेष गुणगान करते हैं और हजारों मुखों से करते हैं, वो भी अंत नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूं। लोग चाहते मैं करो ही नहीं अभी। हाँ तो इस प्रकार से मुरारी गुप्त के घर में महाप्रभु ये लीला प्रकट करते हैं। कल हम स्तुति को सुनेंगे और अद्भुत स्तुति है। देखो अभी अभी उनका स्तुति किया था किसने, श्रीवास पंडित ने, और इतना लंबा स्तुति किया था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं। फिर वापस आते घर में, इधर तो कुछ क्या होगा, उन्होंने फिर भागते मुरारी के वहां श्लोक सुनने मात्र से, और वहां जाकर वो कहते फिर से करो स्तुति। हाँ तो महाप्रभु चाहते हैं, लेकिन जब वो सन्यासी बने तब नहीं चाहते थे अपनी स्तुति, वो नहीं स्वीकार करते थे। वहां उनको भाई आप कृष्ण हो नारायण हो सर्व भट्टाचार्य कहा करते थे, तो वो अपने कानों में उंगलियां डालते थे, नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये क्या कह रहे हो सारो भाव ऐसा कहते। लेकिन यहाँ नवदीप में तो स्वयं ही दिखाते थे मैं वही हूँ, सही मुई मैं वही हूँ। हाँ ये टोटली डिफरेंट है। हाँ यहाँ तो भगवत्ता प्रदर्शित कर रहे हैं, और वहां एक प्रकार से पूरा एक भक्त का चरित्र प्रकट करते हैं। ऐसे हैं गौरांग महाप्रभु। श्री चैतन्य भागवत के वृंदावन दास ठाकुर के शिल प्रभुपाद के।